जिसकी आप संपत्ति हो। निवृत्त गुण वृत्तये, आपको इस भौतिक जगत के जो भौतिक जगत की व्यवस्था चलाने वाले गुण हैं, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके प्रभाव से आप निवृत्त हो। ये तीन गुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते। आत्मा रामाय, राम का मतलब है आनंद लेने वाले और आराम का मतलब है बहुत आनंद लेने वाले। और आत्मा राम अपने आप में आनंद लेने वाले ये केवल एक ही व्यक्ति है। यहां हम देखते हैं भौतिक जगत में कई लोग, उनकी ऐसी ख्याति है, उनका यश फैला हुआ है कि ये बहुत आराम करते हैं, ये बहुत भोग करते हैं। लेकिन क्या भोग करते हैं वो? किसी और चीज को अपने इंद्रियों द्वारा भोगने पर ही उनको भोग मिलता है। ऐसा नहीं कि अपने आप बैठे हैं और आराम ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जीव सदैव किसी और की शक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। कैवल्य पतये नमः। कुंती महारानी कोई बड़ी फिलोसोफर नहीं है ना, ऐसा उनका नाम अगर बड़े बड़े तार्किक विद्वान, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले, इनकी श्रेणी में कुंती देवी का नाम तो नहीं आता। लेकिन वो सब जानती है, कैवल्य अवस्था क्या है वो जानती है अद्वैतवादियों की। और कैवल्य पति, ये अद्वैतवादी लोग हैं वो भी, जिनको भगवान में, अद्वैत का मतलब है भगवान में एक होना, क्यों मालूम नहीं लेकिन इंडिया में ये बहुत लोकप्रिय है। और कैसे इतना लोकप्रिय हुआ समझ में नहीं आता। जैसे हम बीबीटी के लिए मराठी ट्रांसलेटर्स, अनुवादक ढूंढ रहे थे, कोई सांगली में मिला, कोई पुणे में तो बहुत सारे हैं, दादर में एक दो थे। और हम क्या करते थे, उनके पास जाकर कहते थे कि आप हमको एक दो तीन पन्ने सैंपल ट्रांसलेशन करके दिखाओ। ये कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, किसी के साथ काम करवाना है तो पूछते हैं कि आप अपना एक सैंपल दिखाओ। तो इंग्लिश में श्री प्रभुपाद के ग्रंथों का आपको परिचय होगा ही, प्रभुपाद श्लोक, श्लोक के हर एक शब्द की व्याख्या, उसके बाद श्लोक का पूरा इंग्लिश में अनुवाद और उसके ऊपर उनका भक्तिवेदांत तात्पर्य। ये सिंपल स्टैंडर्ड रीति है। तो उसमें लिखा है एसोसिएशन विद द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का सान्निध्य। अब इसमें तो कोई एक होने की बात है ही नहीं ना। कोई व्यक्ति अगर कहा कि मैं बहुत दिन दूर था, अब मैं अपने फैमिली के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं होता कि पति पत्नी बच्चे मिलकर एक व्यक्ति हो जाते हैं, नहीं। एसोसिएशन, संघ का मतलब है उनके समीप रहना, उनके साथ प्रेम के व्यवहार करना। तो भगवान का एसोसिएशन, भगवान का संग लेना, उसमें भी एक मराठी अनुवादक ने कहा था भगवान में एक रूप हो जाना। ये जो एक रूप होने की इच्छा है ये बहुत तगड़ी है, बहुत सर्वव्यापी है। और कई कई लोगों ने तो अटेनिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, सिंपल स्टैंडर्ड फ्रेज है, हमेशा प्रभुपाद अपने किताबों में यूज करते हैं उसको, उसको भी उसने भगवान के साथ एक रूप हो जाना करार किया था। तो ये जो मायावाद है ये बहुत सब जगह फैला हुआ है। ऐसे नहीं है जैसे एक रविंद्र स्वरूप प्रभु बताते हैं, प्रभुपाद ने जो अपना प्रणाम मंत्र लिखा था, नॉर्मली ऐसे होता है कि गुरु के शिष्यों में से कोई एक एकदम ब्रिलियंट शिष्य, एक या दो या उनका एक ग्रुप, वो गुरु जी की स्तुति में एक प्रणाम मंत्र लिखते हैं, गुरु जी को अर्पण करते हैं उसको, कहते हैं कि आप इसको अप्रूव कर दीजिए। अब प्रभुपाद जी की अवस्था ऐसी थी कि ऐसा कोई शिष्य था ही नहीं, तो करे क्या, कोई शिष्य ऐसा है नहीं, शिष्य क्या, उनको संस्कृत कुछ भी पढ़े नहीं थे वो, कई लोग तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं जानते थे, बोलना जानते थे क्योंकि अमेरिकन थे इसलिए, लेकिन लिखना या ऐसे कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं की थी उन्होंने। तो प्रिंसिपल क्या है कि गुरुजी की अगर स्तुति नहीं करेंगे, गुरुजी को अगर स्तुति सुमन अर्पण नहीं करेंगे तो शिष्य की आगे प्रगति नहीं होती। हम प्रतिदिन सुबह गाते हैं, एबे यश गुशुक त्रिभुवन, हे गुरुदेव आपका यश जो है त्रिभुवन में फैल जाए। तो क्या यश है वो, गुरु का कोई अपना पर्सनल कोई यश है नहीं, उनका यश है भगवान के यश को फैलाना। एक डिवोटी का यश उतना ही समझा जाता है जितना उसने भगवान का यश अधिक जगह पर फैलाया है। तो 5000 वर्ष हो गए भगवद गीता यहां पर थी, 300-400 तो कम से कम उसके लोकप्रिय संस्करण थे, लोकप्रिय तो कह सकते हैं एक दृष्टि से कि लोग जानते थे कि हाँ इनकी भी गीता है, इनकी भी गीता है। इतनी सारी गीताएं पढ़ने पर एक व्यक्ति भी भक्त नहीं हुआ, और जहां पर प्रभुपाद जी नहीं पहुंचे उनका ग्रंथ पहुंचा वहां पर लोग भक्त बन गए। तो श्री कृष्ण भगवान का यश, उसका प्रचार, उसको फैलाने के लिए प्रभुपाद ने क्या नहीं किया, और प्रभुपाद जी कहते हैं यही मेरा यश है, मेरा यश कोई भगवान के यश से सेपरेट नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने स्वयं जो हम गाते हैं, नमस्ते सरस्वती देवे, सरस्वती ये श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो सारस्वती का मतलब है उनके अपने, शिष्य को पुत्र भी समझा जाता है। जैसे जमदग्नि का पुत्र हो गया जामदग्नि, या मृकंड का पुत्र हो गया मार्कंडेय, धृतराष्ट्र का पुत्र हो गए धारतराष्ट्र, तो वैसे सरस्वती के शिष्य हो गए सारस्वते, नमस्ते सारस्वते देवे। गौरवाणी प्रचारिणे, ये गौर कौन है, गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की वाणी, उनके उपदेश, गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। निर्विशेषवाद मतलब ये कैवल्यवाद जो शब्द आता है नीचे, कैवल्य, कैवल्य का अर्थ होता है एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक, निर्विशेषवाद। और शून्यवाद, एवरीथिंग इज जीरो, सब कुछ जीरो कर दो। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, और ये उपदेश उन्होंने पाश्चात्य देशों में किया है, वहां पर भगवत विज्ञान का प्रचार किया है, और ऐसा करने से उन्होंने उस देश को बचाया है, उस प्रदेश को बचाया है। रविंद्र स्वरूप प्रभु एक प्रभुपाद जी के प्रथित यश यशस्वी भक्त हैं, अपने भौतिक जीवन में भी यशस्वी थे, वो PhD हैं फिलॉसॉफी में, रिलीजन में, और अभी भी एक गुरु हैं, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने एक बहुत मनोरंजक बात बताई, वो रिलीजन में इस फील्ड में तो PhD थे ही, तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि यहाँ अमेरिका में और यूरोप में यहाँ पर कौन मायावादी है, कोई शंकराचार्य को नहीं जानता, यहाँ पर निर्विशेषवादी कौन है, शून्यवादी कौन है, एटलीस्ट 1970s-80s में तो ऐसे कोई वहाँ, अभी तो बुद्धवाद बहुत फैल गया है, बुद्धिज्म, लेकिन वो बुद्धिज्म भी कैसा है, उसमें कर्म का नियम जानते नहीं, वो लोग मानते नहीं, और मांस वास सब खाते हैं, बुद्धिज्म का सबसे पहली नींव, उसका फाउंडेशन है अहिंसा। तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो नहीं मारा उसको, किसी और ने मारा है ना, तो अब तो मर गया है वो, अब उसको खाने में क्या तकलीफ है। थाईलैंड में ऐसे बोलते हैं कि लोग मछलियों को समुद्र से निकाल कर बाहर रखते हैं और फिर कहते हैं अरे अभी तो मर गए लोग, अभी उनको खाने में क्या तकलीफ है। तो सामान्य जनता इस प्रकार से खाती है, और उनके जो भिक्षु हैं आश्रम में रहने वाले, वो कहते हैं कि हम तो अहिंसा मानते हैं और हम खुद खाते नहीं, मतलब हम पकाते नहीं, हम घर पे जाकर भीख मांगते हैं, जो मिलेगा वो खाते हैं। अरे लेकिन आपने पब्लिक को तो मांस खाने में इंकरेज किया है ना, तो वो तो मांस ही पकाएंगे घर में, फिर आपको भी मांस ही मिलेगा भिक्षा में, और वो भी ऐसे ही घर में जाते हैं जहां पर मांस पकता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन से दोनों को जो चाहिए वो मिल रहा है। आम जनता को चाहिए कि पाप नहीं लगना चाहिए, तो उनको प्रचारक क्या कहते हैं, आप उसको काटो नहीं, मारो नहीं, आप उसको खाली समुद्र से बाहर निकालो, फिर अगर वो मर जाएगा तो फिर क्या करना, तो फिर आप तो खा सकते हो। इस तरह से जो साधु है वो जनता को सुरक्षित रख रहा है, और जनता साधु को सुरक्षित रख रही है उनको मांस मछली जो भी है देने से। इस तरह से दोनों रॉयल रोड टू हेल, नरक के राजमार्ग पर जा रहे हैं। तो रविन्द्र स्वरूप प्रभु कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा यहां पर कोई खास निर्विशेषवादी प्रचार, या तो उनको क्या बीच में लगा कि शायद प्रभुपाद जी को इंडिया में प्रचार करते समय ये लोगों ने बहुत ट्रबल दिया होगा, बहुत छल किया होगा उनका, तो प्रभुपाद जी अभी अमेरिकन डिसाइबल्स को लेकर अपने होम ग्राउंड के लोगों के ऊपर बदला ले रहे हैं। ऐसे होता है ना, आपके गांव में अगर कोई आपने किसी ने आपकी पिटाई कर दी, तो आप आपके चाचा के गांव जाते हो और वहां पर जाकर कहते हो कि कुछ चार पांच लोग देना हमको, जरा एक अकाउंट सेटल करना है अपने घर में, अपने गांव में जाकर। तो उनको ऐसे लगा कि क्योंकि प्रभुपाद के पास अभी बहुत सारे अमेरिकन शिष्य हैं, तो चलो अभी हमला बोल दो निर्विशेषवाद शून्यवाद। बोले मुझे 30 साल लगे समझने में कि ये निर्विशेषवाद और शून्यवाद है, ये कली युग में सब जगह पर फैल गया है। नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन उसका जो अंदर का एसेंस है वो सेम है। कि भगवान को कोई व्यक्ति नहीं समझना निर्विशेषवाद, और जीवन का उद्देश्य है अल्टीमेटली जीरो बनना, शून्य। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य ये विशेष करके इन दो गलत फहमियों के ऊपर सदैव योग्य शास्त्रिक निरूपण देते हैं। प्रभुपाद ने इस लेक्चर का जिस प्रकार से एक उसके ऊपर ग्लॉस या प्रकाश दिया है, तो इसका बीबीटी ने एक टाइटल दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पॉवरिश्ड, सबसे धनहीन। हाँ ये हो सकता है, धनहीन व्यक्ति का धन, जिसके पास धन है ही नहीं उसका धन क्या हो सकता है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य का आरंभ पहले तात्पर्य में ऐसे कहते हैं, अ लिविंग बीइंग इज फिनिश्ड एज सून एज देयर इज नथिंग टू पजेस। क्या ये सच बात है कि अगर हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई तो वी आर फिनिश्ड? हम तो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन माइंड से मेंटली वी थिंक वी आर फिनिश्ड। हमको स्कूल में एक कहावत सिखाते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर संपत्ति चली गई तो कोई नुकसान नहीं हो गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ नुकसान जरूर हो गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो सर्वनाश हो गया। उसका मतलब एक जमाने में कम से कम या कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों को यह पता था कि जीवन में सबसे पहले किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, वो अपने चरित्र को, कैरेक्टर। उसके बाद हेल्थ और उसके बाद वेल्थ। कई बार ऐसे देखते हैं कि एक समाज, एक संस्कृति, एक कम्युनिटी, एक फैमिली या एक व्यक्ति, ये व्यक्ति एक बैलेंस्ड व्यक्ति है ये कब समझा जाता है, ये फैमिली एक अच्छी फैमिली है ये कब समझा जाता है, ये कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज या कम्युनिटी किसकी भी हो, ये एक कम्युनिटी है, ये संघ है, इसका टेस्ट क्या है, या ये राष्ट्र है उसकी परीक्षा क्या है? तो यही तीन चीजें, वेल्थ, हेल्थ और कैरेक्टर। और जिस समय या जिस किसी प्रसंग पर ऐसे अगर कुछ चिन्ह नजर आए कि वेल्थ को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, हेल्थ को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, या कैरेक्टर को कुछ महत्व नहीं दिया जा रहा है, तब समझ लेना चाहिए कि डेंजर, डेंजर जोन। श्रीमद् भागवत में भी यह आता है कि नष्ट वित्तम इव, एक व्यक्ति अगर उसका सारा पैसा चला गया तो कहते हैं अरे मैं तो लुट गया, अरे हुआ क्या, अरे मैं खत्म हो गया, अरे क्या हुआ क्या, अरे अभी कुछ बचा नहीं जीवन में। क्यों? क्योंकि मेरा सारा पैसा चला गया या इतना इतना नुकसान हो गया। तो इसका मतलब वी हैव चोजन, हमने ऐसा चयन किया है, हमने ऐसा चॉइस किया है कि मुझे ऐसी संस्कृति में रहना है जहां पर पैसा ही सब कुछ है। मेरे ख्याल से लास्ट वीक या उसके पहले हमने इस बात के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी कि एक अभी जो रिसेशन चल रहा है तो एक इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर, इंजीनियर प्लस MBA और कैलिफोर्निया में नौकरी और बड़ा बंगला, मैंशन, बंगला भी नहीं बड़ा मैंशन, और ऐसी कम्युनिटी में जहां पर सबके ऐसे ऐसे बड़े बड़े बंगले हैं, घर में कम से कम अगर चार लोग घर में हैं तो कम से कम 6 गाड़ियां होनी चाहिए, ऐसा भी रूल होता है वहां पर। तो वो कंपनी चली गई तो इस व्यक्ति ने एक नोट लिखी कि मेरे सामने अभी दो ही विकल्प हैं, केवल अपने आप को मारूं कि मेरे 3 बच्चे और पत्नी को मारकर फिर मारूं। तो उसने यही निर्णय लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला अपनी सुरक्षितता का ये नहीं कर सकता, मुझे अपने पत्नी और बच्चों को भी ठीक ढंग से रखना है। तो उसने पहले तीनों को मार दिया फिर अपने आप को मार दिया। तो ये क्या है, मतलब पूरा जीवन ये इसी फाउंडेशन पर, इसी धारणा पर है कि अगर पैसा है, नाम, यश, प्रॉफिट, फेम, एडोरेशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा हो रही है हमारी समाज में, तो हम जी सकते हैं, तो हम ठीक से रह सकते हैं। एक किसी ने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि आज के 21st century में लोग क्या करते हैं, पीपल डू जॉब्स दे डू नॉट लाइक, ऐसी नौकरी करते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती, दे लिव इन फैमिलीज विथ हुम दे कैनॉट कम्युनिकेट, ऐसे फैमिलीज में रहते हैं जिनके साथ ठीक से बात नहीं कर सकते, दे बाय थिंग्स दे डू नॉट वॉन्ट, ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं रहती, टू इंप्रेस पीपल हुम दे डू नॉट अप्रिशिएट। ये सब किसके लिए, ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा अपना प्रभाव, अपना इंप्रेशन डालने के लिए जिनके प्रति उनके मन में कोई सद्भावना नहीं है। तो कितनी फॉल्स सोसाइटी है ये, हॉलो है, खोखला है अंदर से ही। जैसे हमारे कॉलोनी में ड्रामा होते थे फेस्टिवल हर दिवाली को, और हम सब बच्चे लोग वहां पर ड्रामा में काम करते थे। तो एक दिन एक बड़ा पौराणिक ढंग का ड्रामा था, और उसमें हमारी ठीक से रिहर्सल वगैरह नहीं हुई थी, तो हमारे डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा था कि शाम को आना जल्दी, क्योंकि दो तीन उसको रन थ्रू बोलते हैं, फटाफट 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 सब लोग अपना डायलॉग बोलेंगे। उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था कि हम सब अपना लाइन्स ठीक से बोलेंगे कि नहीं। और उस समय मेकअप मन आ गए और उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा, कोई नारद मुनि बना कोई इंद्र, तो सबको मेकअप लगाया। लेकिन इतने टेंस थे हम लोग, इतना टेंशन था वो कि ठीक से ड्रामा होगा कि नहीं। और ऊपर से 4 बजे से दोपहर से प्रैक्टिस शुरू, रात को 9-9:30 बजे ड्रामा एक्चुअली होगा। तो ऐसे होता था कि एक प्रैक्टिस के बाद वो सारा मेकअप पसीने से निकल जाता था या कुछ होता था, तो वापस करना पड़ता था। तो इमेजिन ऐसे लाइफ में रहना जहां पर सुबह आपने मेकअप कर दिया वो दोपहर तक निकल गया, फिर दोपहर को मेकअप किया वो शाम तक निकल गया, शाम को मेकअप किया वो रात तक निकल गया। एक दिन आप थक जाते हैं कि ये कितना मेकअप लगाते रहना, क्योंकि इसकी फाउंडेशन, इसका इसकी जो नींव है वही गलत है। तो यू आर डूइंग जॉब्स यू डोंट लाइक, फैमिली नो कम्युनिकेशन, बाइंग थिंग्स यू डोंट वॉन्ट, टू इंप्रेस पीपल यू डोंट अप्रिशिएट। तो कितना ये मिसमैच, पूरा मिसमैच है ये। लेकिन होता क्या है कि ये सिस्टम ऐसी है कि इससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, वो कहता है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, और उसकी संचालिका वो महिला जो है वो बहुत कल्चर करती है। तो उसके मीटिंग में हम एक बार गए थे, तो वो बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि शांति होनी चाहिए और समाज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। फिर किसी ने वो गई, उसके बाद उसका जो मैनेजर था उसको किसी ने पूछा कि आपका जो न्यूज़पेपर है ना उसके साथ एक सप्लीमेंट आता है, उसमें क्या क्या नहीं होता। आपने जो अभी कहा ना कि समाज में ठीक से ऐसे होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, होना चाहिए, मुंबई टाइम्स शायद उसका नाम है ऐसे क्या, बॉम्बे टाइम्स। तो उस वो जो मैनेजर है, पूरा एरिया का मैनेजर है वो, बॉम्बे एरिया का, उसने कहा मैं खुद कभी उसको देखता तक नहीं। देखो जो उसका एग्जीक्यूटिव मैनेजर है वो तो अंदर लिखता विखता नहीं कुछ भी, लेकिन उसमें तो किसी ने पूछा कि ये सब क्या है, ये पार्टी में ये आया था, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, फिर ये इसके साथ खा रहा है, ये इस साथ खा रही है, ये इसका अभी तीसरा पति है या इसकी सातवीं पत्नी है या ये है वो है, ये सब पढ़ने से आप कौन सी संस्कृति कौन सा कल्चर लोगों को दे रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, मतलब उनका जो विदाउट सेइंग एनीथिंग उनका जवाब यही था कि लोगों को चाहिए आजकल, पीपल वॉन्ट इट। मतलब ये ऐसे हो गया है कि आप किसी का ग्लॉसी ग्लैमरस पिक्चर देख रहे हैं और देखकर किसी को कोई ट्रेन में अक्सर सुना देता है, लोग बोलते हैं कितना भद्दा दिखता है, नहीं ये कितना खराब दिखता है, ये कपड़े कितने अच्छे हैं लेकिन ये व्यक्ति कितना खराब है। अगर ये खराब है तो आप इसको खरीदते क्यों हो और पढ़ते क्यों हो। लेकिन खरीदना ये उससे कोई एस्केप नहीं है, ये जो सिस्टम है पूरा बाहर का, इसमें आपने एक बार अंदर हाथ डाल दिया तो फिर पूरा आपका पैर वहां से बाहर निकलने तक ये सिस्टम आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे वो गन्ने का जूस का मशीन होता है ना, उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि आधा निकाल कर बाहर निकालते हैं। तो मटेरियल लाइफ का मतलब ऐसा होता है कि हम आधे अंदर जा चुके हैं और कोई कहता है कि ठीक है अभी पूरा निकाल दो जो भी है होने दो, पूरा जूस निकालने तक ये मशीन वाला छोड़ेगा नहीं हमको। पूरा जो भी हमारा अंदर सहानुभूति दया करुणा ये जो भी कुछ सुपीरियर गुण हैं या आत्मा के गुण हैं, और हर एक व्यक्ति में थोड़े से तो है ही, हम शेर को या बाघ को क्रूएल या क्रूर क्यों कहते हैं, खूंखार क्यों कहते हैं, अरे अपने बच्चे को कितना प्रेम से चाटते हो, है कि नहीं। शेरनी जो है, शेरनी वो भी अपने बच्चे को बहुत प्रेम से चाटती है। एक बिल्ली है एक चूहे को मारेगी, लेकिन अपने बच्चे को एकदम अच्छी तरह से पकड़ के जाती है वो। तो माइन्यूट क्वांटिटी में और केवल लिमिटेड लोगों के लिए प्राणियों में भी ये गुण दिखते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन तो इन सब का पीक, पर्वत की चोटी है ये, हाईएस्ट पॉइंट। तो मनुष्य जीवन में ये सब गुण दिखाने के लिए, इनका एक्सपोजर करने के लिए चांस दिया जाता है। और मनुष्य जीवन में अगर हम अपने चॉइस से ऐसा कुछ चयन करें कि नहीं नहीं मेरे जीवन में कुछ भी हो सकता है, घर में ये चाहिए वो चाहिए सामान चाहिए, या अपना पर्सनल अग्रेंडाइजमेंट, पर्सनल शरीर के लिए और कुछ बढ़ाते रहो, उसमें फिर इतना पैसा लगेगा कि फिर वो हमेशा कम पड़ता रहेगा। एंड व्हेन एवरीथिंग इज बिल्ट अपॉन हाउ मच वेल्थ यू हैव, वो वेल्थ चले जाने पर यू फील आई एम लॉस्ट, वो पैसा निकल जाने पर लगता है कि अरे मैं तो लुट गया, मैं तो खत्म हो गया, मेरा अभी कुछ नहीं रहा। प्रभुपाद जी लेकिन एक अलग पॉइंट यहां पर बता रहे हैं कि ए लिविंग बीइंग इज फिनिश्ड एज सून एज देयर इज नथिंग टू पजेस, देयरफॉर अ लिविंग बीइंग कैन नॉट बी अ रिनाउंसर। अगर मेरा कुछ भी नहीं है इस जगत में तो मैं त्याग किसका कर रहा हूं? जैसे एक साधु को एक सेठ जी ने पूछा, आपने सब कुछ त्याग दिया है, आप बड़े त्यागी हैं। तो वो सेठ जी को बता रहे साधु कि देखो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि सबसे संपत्ति अधिक किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण के पास। सबसे अधिक सौंदर्य, सबसे अधिक यश श्री कृष्ण के पास है। हमने इस जगत की मामूली संपत्ति को छोड़कर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मन में रखी है, अभी तक तो प्राप्त नहीं हुए, इच्छा मन में रखी है। मुझे लगता है कि आपने भगवान कृष्ण को त्याग कर इस दुनिया की संपत्ति के पीछे आप लगे हैं, तो हम दोनों को दिखाए तो सबसे बड़ा त्याग तो आपका है। वो बोले ऐसे कैसे, हम तो त्यागी नहीं, हम तो भोगी लोग हैं भाई। बोला ना सुनो मेरी बात, कोई बिजनेसमैन है, जैसे अभी छाता गमबूट रेनकोट ये चीजें कहां बेचने योग्य हैं, और किसको पता चला कि बंबई में अभी 8 दिन में बहुत बारिश होने वाली है, तो बंबई में वो स्टॉल लगाएगा। वो उसके सामने अगर चॉइस है कि राजस्थान जाके बेचो या बंबई जाके बेचो, तो सोचेगा राजस्थान में तो इतनी बारिश होती नहीं, वहां जाके करें क्या, आने जाने का भाड़ा भी निकल नहीं आएगा शायद, लेकिन बंबई में चांस है। तो एक बिजनेसमैन अगर ऐसा निर्णय लेता है कि ये दो ऑप्शन में से कहां जाएं, तो वो यही सोचेगा कि जहां पे ज्यादा प्रॉफिट है वहां पे जाना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन ऐसे सोचता है तो क्या लोग उसको दूषण देते हैं, गाली देते हैं कि हे ऐसे क्यों कर रहे हो ना? तो बोला वो तो मेरा नेचर है कि ज्यादा प्रॉफिट हो वहां जाना चाहिए। तो साधु यही बता रहे हैं कि एक है दुनिया की संपत्ति, या तो उसको पकड़ो या श्री कृष्ण। तो हमने केवल मामूली संपत्ति को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रति पीछे लगे हैं हम, तो हम तो केवल बुद्धिमान लोग हैं, हम कोई त्यागी वागी नहीं है। और अगर ढंग से देखा जाए तो त्याग तो आपने किया है, आप तो मुझसे भी बड़े त्यागी हैं। अब उस सेठ जी के दिमाग में कुछ थोड़ा कुछ चमकने लगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही है। बद्ध जीव को कभी मूर्ख कहते हैं शास्त्र, या कभी चोर कहते हैं। आज का हमारा लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि हम इसको थोड़ा देखेंगे आज। मूर्ख क्यों कहा गया है? अगर जीव कहेगा कि मैं त्यागी हूं, आई एम ए रिनाउंसर। चोर कभी कहा जाएगा जब वो कहेगा कि मैं इस चीज का उपभोक्ता हूं, ये मेरी चीज है। तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव स। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार की चीजों को आराम से भोगता है और उसका बिल नहीं चुकाता वो चोर है। यो भुंगते, जो इसका भोग करता है, जैसे हम पेपर में पढ़ते हैं कि बिजली की चोरी होती है। बिजली की चोरी कैसे करेगा कोई? बिजली कोई पॉकेट वॉकेट है ना कि इसका वॉलेट मार दिया, ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन गांव में जाओ तो कहीं दुकान के सामने एक छोटी सी वायर ऐसे डाली होती है, वहां से बिजली आती है इधर, और उसका बिल बिल तो कुछ है ही नहीं। जैसे पहले, अभी तो हमारा वाड़ा फार्म बड़ा हो गया है, एक बार सुबह सुबह बिजली चली गई, नहीं वाड़ा नहीं, निगड़ी में मैं कुछ ट्रांसलेशन काम के लिए गया था। मैंने कहा कम से कम सुबह बैटरी को चार्ज करके रखता हूँ ताकि दिन भर बिजली नहीं होगी चलेगा, तो सुबह से ही बिजली गायब। तो मैंने एक भक्त से पूछा, कंप्लेन करो भाई, फोन करके बोलो कि बिजली नहीं है। वो बोले, प्रभु जी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों, जहाँ से हम रास्ते से आते हैं वहाँ पर तो MSEB का स्टेशन है, वहाँ पर कंप्लेन करो। बोले, यहाँ कोई बिल तो नहीं भरता ना, तो कंप्लेन किसको करें हम? कंप्लेन करें तो पता चलेगा कि ये इधर बिजली ले रहा है करके। तो हमने कहा, अरे क्यों हम लेते नहीं, बिल नहीं भरते? बोले, हमने उनको अप्लाई किया कि आप हमको दे दो, हमको लीगल बिल दे दो। तो वो क्या सोचते हैं, अगर लीगल बिल देंगे तो फिर कंप्लेन आती रहेगी, मतलब उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अजीब बात है ये कलयुग में। तो वो एक दो बार लोग आके देख के गए और बोले, देखो आपका कितना लेते हैं आप, ये धर्म के कार्य में ले रहे हैं ना, अभी कुछ साल बचेगा ये, उसके बाद ये जो पूरा एरिया है वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जाएगा, प्राधिकरण के अंडर जाएगा, तब तो आपको बिल भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये सब राम भरोसे काम चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा अरेंजमेंट है तो यू कांट कंप्लेन। तो मैंने कहा, ये चोरी हुई ना? बोले, अभी हम तो चोरी करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन ये सरकारी हमको नहीं हेल्प करी तो हम क्या करें। लेकिन बाकी जो खेती वाले लोग हैं वो सब मस्त हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो पंप चला रहे हैं और क्या क्या चला रहे हैं। तो एक दिशा से राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, अर्थात प्रभुपाद बता रहे हैं कि कलयुग में नुकसान का एकमात्र कारण है मिसमैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर नुकसान यहां पर होता है, मिसमैनेजमेंट। तो जो व्यक्ति रिसोर्सेस लेगा लेकिन उसका कुछ बदले में देगा नहीं, तो वो चोर हो गया। और फूल, मूर्ख क्यों? जो चीज आपकी है नहीं उसको अगर आप कहोगे कि मैं इसको दान में दे रहा हूं या मैं इसको त्याग कर रहा हूं। एक लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप किसी के घर में गए और आपने कहा कि ये फर्नीचर बड़ा अच्छा है, ठीक है मैं इसको दे देता हूं, आपको दे देता हूं, तो आपने कहा ये आपका है ही नहीं, आप क्या मुझे दे रहे हैं, ये आपका है ही नहीं, ठीक है मैं उसको रिनाउंस करता हूं, मैं उसको छोड़ देता हूं। जो चीज आपकी है नहीं उसको हम त्याग नहीं सकते, और अगर हमने कुछ चीज ले ली तो हम चोर हो गए। तो प्रभुपाद जी का प्रश्न यह है, हाउ कैन ए पर्सन बी हैप्पी इफ इज ए फूल एंड ए थीफ। जो मूर्ख है और जो चोर है वो शांत कैसे रह सकता है? चोर एक बात जरूर कर सकता है, वो टेम्पररीली बोल सकता है कि ये चीज मेरे पास है, बट हैप्पीनेस तो कह देखिए, हम सोचेंगे नहीं नहीं, कई कई चोर हैं जो सुखी दिखते भी हैं। एक थोड़े समय के लिए उसको लगेगा कि ये चीज मेरे पास है तो आई एम एंजॉइंग इट और मुझे भोग मिल रहा है, लेकिन हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट आर डिफरेंट थिंग्स। आनंद या सुख और समाधान, तुष्टि, सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये अलग बात है। इन देयर ऑनेस्ट मोमेंट्स, ईमानदारी अगर से पूछो, प्रामाणिक ढंग से किसी को कहोगे सच बोलो आप इस जॉब में या इसमें सुखी हो, समाधानी हो। तो आज समाधान किसी के पास नहीं है, और लोग एडमिट करते हैं कि ये सब है लेकिन समाधान नहीं है। एक बड़े बिजनेसमैन महाराज से बता रहे थे, राधारान महाराज पर मिलने आए थे, अच्छा चल रहा है बिजनेस, फैमिली भी अच्छी है, पैसा भी बहुत है, नींद ही नहीं आती रात को। क्यों नींद नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है, कोई चिंता है? बोले क्या चिंता है, यही पता नहीं चल रहा, यही बड़ी चिंता है। जैसे जो बच्चों के डॉक्टर है ना, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि आपका पेशेंट कुछ बोलने वाला नहीं है क्या हो रहा है करके, है ना। बड़ा बूढ़ा है या ज्यादा बूढ़ा भी हो गया तो भी, एक्चुअली शास्त्र से बताते हैं कि बचपन और बूढ़ा दोनों अवस्था एक जैसी होती है। पीपल आर टेम्परल, टेम्परामेंटल, चिढ़ते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो आज साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट लोगों के सामने ये समस्या लोग बताते हैं कि क्या चिंता है, यही समझ में नहीं आती, यही चिंता है, तो आप कुछ बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोले आपको ही मालूम नहीं है क्या हो रहा है, तो मुझे मेरे लिए कितना कठिन है समझना कि आपको क्या तकलीफ है। वो भक्तिनाथ ठाकुर अपने एक पद में गाते हैं, वार्धक्य एकोन उपाय विहीन, कि अभी वार्धक्य बुढ़ापा आ गया है, कोई उपाय काम नहीं करता। वार्धक्य आ गया है कि जो नहीं लागे भालो, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो जो व्यक्ति 60 70 80 साल की उम्र में अगर कोई चीज एक्सपीरियंस करता था, आज वही एक्सपीरियंस वही अनुभव किसी को 25वें 30वें साल में आ रहा है। अनामिक चिंता, अननोन टेंशन, ये बड़ी डरावनी चीज है कि अगर पता ही नहीं चल रहा है कि व्हाट इज ईटिंग मी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से क्या है वो। और ऐसे व्यक्ति को अगर समझाया जाए कि ये फिलोसफी है, तो बोले बहुत फिलोसफी मत झाड़ो, बहुत फिलोसफी ज्यादा होती, मतलब ये समझ में नहीं आता, क्योंकि चॉइस। आप खुद देख सकते हैं कि आपके जीवन के चॉइसेस क्या हैं, व्हाट ड्राइव्स यू, कौन कौन सी चीजें, कौन से वैल्यूज आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर कोई जीवन में प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है, यहां वहां मत देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स मत पढ़िए, आप केवल आपके वैल्यूज को प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ये सही वैल्यू है मेरे जीवन में, मनी के लिए इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, फेम, प्रॉफिट, एडोरेशन, कन्वीनियंस की चीजें, हॉबीज, इंटरेस्ट जो भी है, इनके लिए इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। 100% समस्या की जो जर्म्स, जो बीज हैं, वो उन्हीं में नजर आएंगे। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि लिविंग बीइंग रिनाउंसेस समथिंग फॉर गेनिंग समथिंग मोर वैल्यूएबल। सिंपल प्रिंसिपल है, एग्जाम चल रही है और किसी को आप पूछो कि पार्टी चलोगे, बोला ना अभी एग्जाम है। बोले पार्टी तो आपको अच्छी लगती है, फ्रेंड्स लोग हैं, दोस्त लोग हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी अगर पार्टी में जाऊंगा, अभी अगर मौज मजाक करूंगा, तो फिर एग्जाम में नंबर कम आएंगे, गुण कम आएंगे। एक बिजनेसमैन तीन ऑप्शन है, उसमें से दो ऑप्शन छोड़ देगा वो, क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो सिंपल प्रिंसिपल प्रभुपाद जी कितने अच्छे ढंग से बता रहे हैं, ए स्टूडेंट सैक्रिफाइसेस चाइल्डिश प्रोक्लिविटीज टू गेन बेटर एजुकेशन, अ सर्वेंट गिव्स अप हिज जॉब फॉर ए बेटर जॉब, Similarly, a devotee renounces the material world not for nothing, but for something tangible in spiritual value. तो कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने भौतिक जगत को त्याग दिया, मैंने ये जॉब को छोड़ दिया, मैंने ये एजुकेशन को छोड़ दिया, मैंने मेरी फैमिली को छोड़ दिया, मैंने मेरे राष्ट्र को छोड़ दिया, ये मैंने ये सब त्याग दिया, और अभी आगे कुछ मिलेगा कि नहीं। नॉर्मली हम कभी एक चीज छोड़ते नहीं जब तक हमको दूसरा मोर वैल्यूएबल प्रिंसिपल न मिले। पहला उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी एंड अदर्स गेव अप देयर वर्ल्डली पॉम्प एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द सेक ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड। भक्तिराम ठाकुर एक पद में गाते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। प्रिंसिपल समझने में सिंपल है, अपने आप को अगर कृष्ण दास समझे तो वो कहते हैं कि जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। हम कहेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि कृष्ण दास होने का वास्तविक अर्थ क्या है ये तो पहले समझना चाहिए। एक लास्ट उदाहरण से आज का प्रवचन यहां पर समाप्त करेंगे। समुद्र एक बार एक चिड़िया के दो अंडे छीन लेता है ऐसे ही मजाक में। कभी कभी बहुत शक्तिशाली व्यक्तियों को कभी दुर्बल व्यक्ति की मजाक करने का बड़ा मजा आता है। तो चिड़िया ने कहा मेरे अंडे लौटा दो प्लीज। बोले ना। बोले आप लेके क्या करोगे उसको। बोला बहस मत करो निकल जाओ यहां से। तो कह रही कि अरे मेरे अंडे हैं आप क्यों नहीं दे रहे मुझे वापस, क्या करोगे मेरा तुम। तो चिड़िया भी कभी ललकारे तो आदमी कभी कभी जोर से कुछ बोल देता है। तो चिड़िया बोलती मैं तुमको सुखा दूंगी। बोले हा मुझे सुखा होगी चलो कोशिश करो। तो चिड़िया वास्तविक जाती थी समुद्र में थोड़ा पानी अपने चोंच में रखती थी और जाके दूर जाके फेंकती थी। तो एक ने देखा, दोनों ने देखा, तीनों ने देखा। बोले ये क्या कर रही है पागल। बोले मैं समुद्र को सुखाने वाली हूँ। बोला आज तक कभी हुआ नहीं ऐसे, मर जाओगे तुम लेकिन समुद्र कभी सूखने वाला नहीं है। तो उसने कहा देखो मैंने अभी बोल तो दिया है तो मैं कोशिश तो करती रहूंगी। धीरे धीरे कानों सुनी बात फैल गई गरुड़ जी तक। और गरुड़ जी को किसी ने बताया कि आपकी एक छोटी सी बहना है, छोटी सी बहन, और उसको समुद्र ने ऐसे बताया तो अभी वो समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है। वो बोले अच्छा एक बार देख तो लेते हैं ये क्या हो रहा है इधर। तो वहां पर आए तो समुद्र वहां पर जोर से ठहाका मार के हंस रहे थे। बोले हा 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 देखो ये आज तक बड़े बड़े लोगों को नहीं जो ऐसे हो गया पॉसिबल, ये आज एक चिड़िया मुझे ललकार रही है। तो उन्होंने चिड़िया से पूछा क्या हो गया। बोले ये ऐसे मेरे अंडे ले लिया, मैंने केवल प्रार्थना की कि अंडे वापस लौटा दो तो कह रहा है कि नहीं दूंगा, क्या कर सकती हो मेरा तुम। तो मैंने कहा दिया कि मैं तुमको सुखा दूंगी। तो गरुड़ जी को सुनकर बहुत क्रोध हो गया कि ये क्या समझता है अपने आप को, बोले छोटी सी चिड़िया है उसको ऐसे बर्ताव करना। तो गरुड़ जी सामने आकर कहने लगे इसके अंडे लौटा दो वरना मैं सुखा दूंगा। तो ये देखकर समुद्र थर थर कांपने लगे, वहां पर तुरंत अंडे लौटा दिए। एक दृष्टि से माया शक्ति इस समुद्र की तरह है, माया शक्ति के सामने हम जो हम माया को कहते हैं कि नहीं करनी आपकी सेवा मुझे, मुझे कृष्ण की सेवा में जाना है, तो माया कहती है अच्छा कोशिश तो करके देखो कैसे बच जाओगे मेरे चंगुल से, कैसे बाहर निकलोगे। तो हम जो भी प्रयास करते हैं, नाम जप करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, तुलसी दल खाते हैं, चरणामृत लेते हैं, धाम जाते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। एक बार राधानंद महाराज बता रहे थे After eating forests of tulsi leaves and drinking oceans of charanamrit, के तुलसी दल के तो मैंने एक बुरा जंगल खा लिया होगा अब तक, और चरणामृत के तो मैंने समुद्र पी लिए होंगे, अब तक वो भक्ति क्यों नहीं मिल रही है, अभी तक वो माया से छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि माया से छुटकारा ऐसे नहीं होता। एक दृष्टि से उस चिड़िया के चांसेस ज्यादा हैं कि वो सुखा देगी समुद्र को, लेकिन हम माया शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। तो व्हाट इज द वे आउट, उसके लिए उपाय क्या है। चिड़िया ने एक काम किया, उसने कभी अपना कार्य छोड़ा नहीं, उसको मालूम था कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, फिर भी कोशिश करना अपना काम है। ये कोशिश से कानों सुनी बात पहुंच जाती है हायर अथॉरिटीज तक। तो वैसे ही हम भी अगर हमारा रोज का नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा सदाचारी जीवन, हमारी वैष्णव सेवा, शास्त्र श्रीमद् भागवत का अध्ययन और जीवों पर दया, जितना हो सके उतना दूसरों को कृष्ण बांटना, ये सेवा करते रहेंगे, एक न एक दिन हमारी बात भी भगवान तक पहुंच जाएगी। और भगवान कृष्ण के सामने अगर मायादेवी को खड़ा भी किया जाए तो भागवत में श्रील व्यास देव बताते हैं, विलज्ज मानया, मायादेवी भगवान को अपना मुख नहीं दिखा सकती, शर्म के मारे वो मुख झुकाए रखती है। वही मायादेवी गौरांग महाप्रभु के सामने आ गई और उन्होंने कहा कि कितना मेरा नाम खराब हो गया, नहीं भक्तों के समाज में तो लोग एक दूसरे को अगर कुछ बोलना भी होंगे तो कहेगा ये माया में है, या किसी को कहेंगे तू माया है साक्षात मेरे लिए, तो क्या मेरा रेपुटेशन है। तो भगवान ने कहा, माँ गौरांग महाप्रभु ने कहा, नहीं ये भी सेवा है, आवश्यक सेवा है। बोले नहीं, लेकिन मुझे आपकी कृपा चाहिए। माया देवी ने स्वयं गौरांग महाप्रभु की चरण रज को लेकर सीमंत, जो माता जियों का जो पार्टिंग ऑफ द हेयर सीमंत, वहां पर रख दिया कि कम से कम इस बहाने मैं आपकी सेवा में हूं, इतना सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। भले ये सेवा अच्छी नहीं होगी भक्तों की दृष्टि से, लेकिन आपने मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार किया है, दैट इज माई गुड फॉर्चून। तो सीमंत द्वीप करके जो हम जाते हैं नवद्वीप में, वो द्वीप का नाम इस तरह से पड़ा है। तो बड़ा अच्छा परपोट है ये, आगे की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, I'll repeat the question. You're asking whether you're talking about beggars. Okay. Yes. इनका प्रश्न है मटीरियली इम्पावरिश्ड, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति धनहीन है, निर्धन है, तो भौतिक दृष्टि से धनहीन या निर्धन की अवस्था, कभी कभी हम भिखारियों को देखते हैं, गरीब, और उनके पास कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, बस कपड़े हैं या कुछ बर्तन वर्तन है, और वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, तो क्या और भगवान तो उनकी प्रॉपर्टी दिखती नहीं है, ऐसा नहीं कि वो भगवान के भक्त हैं। तो ये निर्धन होना भौतिक दृष्टि से, ये किस ढंग से समझा जा सकता है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? वास्तविक कुछ प्रॉपर्टी न होना या कोई और बात? इज दिस अ क्वेश्चन? बेसिकली पूरा ये परपोर्ट इसी के ऊपर है, तो आगे इसको हम देखेंगे, बट इन शॉर्ट अभी इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। प्रभुपाद ने इसका उदाहरण ऐसे दिया है, बैंक में एक व्यक्ति काउंटर के सामने काम करता है, आपने दिया हुआ 2,00,000 रुपया हो, 5,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, आपके नाम पर अकाउंट में डाल देता है। अगर आप पैसा रखने आ गए तो भी उसका चेहरा वैसा होता है, अगर आप अपना पैसा निकाल रहे हो तो भी उसका चेहरा वैसा ही होता है। ही इज नॉट हैप्पी दैट यू हैव पुट मोर मनी, और ही इज नॉट सैड कि आप बहुत पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। क्योंकि उसके पास पैसा होने पर भी उसकी धारणा ये होती है कि ये किसी और का है, मेरी अपनी सैलरी अलग ढंग से मेरे पास आएगी। तो मटेरियली इम्पॉवरिश्ड का मतलब केवल भौतिक दृष्टि से गरीब नहीं, क्योंकि भौतिक दृष्टि से व्यक्ति गरीब क्यों होता है, प्रभुपाद का एक सिंपल कारण है। ही सेज वास्तविक नोबडी इज पॉवर्टी स्ट्रिकन हियर। जैसे कि यहां पर आप फैमिली वाले लोग हैं, कई घर पर दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, जिसके घर में दो बच्चे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये बच्चा गरीब है और दूसरा बच्चा अमीर है? नहीं, जो फैमिली का इनकम लेवल है वही बच्चों का हो गया, सिंपल बात है ना। फिर भी एक दिन मम्मी बोलती है एक लड़के को, आज तुमको लड्डू नहीं मिलेगा। बोलते क्यों? क्योंकि तुम एग्जाम में फेल हो गए, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी सिस्टर को मिलेगा, तुम्हारे भाई को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। शी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम गेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसको एक सबक सिखाना है, वो उसको भोग नहीं दे रही है, उसको एक सबक सिखाना है। कोई बाहर का व्यक्ति आके कहेगा कि आज लड्डू कम बनाए क्या? बोला ना। तो आप ये बच्चे से प्रेम नहीं करती क्या? बोला ना। तो उसको खाना क्यों नहीं दे रही है? उसको सबक सिखाने के लिए। ये रहस्य है। सबको अगर भगवान कृष्ण के पुत्र माना जाए, एक मामूली माँ या मामूली पिता भी कभी ये नहीं करेगा कि एक बच्चे को खाना दे रहा है, एक बच्चे को खाना नहीं दे रहा है ना। तो जिनको हम परम पिता कहते हैं, जिनका इंटेलिजेंस इनफिनाइट है, समुद्र भी कम पड़ेगा उसकी उपमा में। हाउ कैन गॉड डिसाइड कि इसको खाना देना है, इसको भिखारी रखना है, इसको गरीब रखना है? इम्पॉसिबल। वो केवल अपने एक्शंस के रिएक्शंस भोग रहे हैं। या कभी कभी आप डॉक्टर हैं, कोई कहेगा हमारे चाचा बहुत अमीर हैं, आप जानते हैं, तो उनको भले टाइफाइड हुआ है, कोलेरा हुआ है, हम उनको लड्डू कचौड़ी समोसा खिलाएंगे। आप कहेंगे आप मूर्ख हो। मैं कहता हूं केवल चावल की कांजी पिलाना चाहिए बस। तो अगर वो कहेंगे वो हमारे स्टेटस से बहुत लो है, वो हम बहुत अमीर लोग हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप जानते नहीं हमारे पास बहुत पैसा है। बोले आप अफोर्ड कर सकते हो, इनका स्टमक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसी तरह से कभी कभी ये भी दिखा जाता है, मटेरियली प्रॉस्परस पीपल बहुत पैसा है, लेकिन उनका जीवन शैली देखो, उनकी जीवन शैली देखो, उनका भोग देखो, कुछ एक दो चपाटी खाई तो खाई, नहीं तो नहीं। बोले हाजम नहीं होता, नींद नहीं लगती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो उसकी अवस्था बाहर के जो आदमी से क्या है? कभी कभी होते इतना काम है कि खाने तक को टाइम नहीं है। एक के पास खाना है नहीं इसलिए नहीं खा रहा है, एक के पास टाइम नहीं मिलना इसलिए खा रहा है। शास्त्र कहता है दोनों को पनिशमेंट एक ही मिल रही है। एक थोड़ा फैशनेबल है कि मेरे पास बहुत किचन, दो दो किचन है, दो दो फ्लैट्स हैं, लेकिन आजकल इतना बिजनेस बढ़ रहा है कि खाने को टाइम नहीं मिलता। नेट रिजल्ट क्या है? खाना नहीं मिल रहा है ना। इस ढंग से हो या उस ढंग से हो, तो व्यक्ति इस तरह से सोचता नहीं। तो बेसिकली मटेरियली इम्पॉवरिश का मतलब है संपत्ति है भी या संपत्ति नहीं भी। अंदर से संपत्ति के बारे में अटैचमेंट नहीं है, और जो अटैचमेंट अगर नहीं होती तो वहां पर श्री कृष्ण रूपी धन आ जाता है। इज दैट ऑल राइट? इसके ऊपर हम बाद में, ये पूरा श्लोक इसी के ऊपर है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।